हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। निमानी परिवार के सभी सदस्य माधवी के कमरे में मौजूद थे। माधवी बिस्तर पर बैठी थी, उसकी निगाहें किसी पर नहीं थी। वो बस अपने हाथों को देखते हुए उदासी से बैठी थी। ना तो वो किसी की बातों का जवाब दे रही थी और ना ही किसी से झगड़ा कर रही थी। रूहान, जो काफी देर से उसके सामने खड़ा था, धीरे से उसके पास बैठा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, क्या बात है? अगर आप बताएंगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? आखिर किसने आपको बुरा भला कहा होगा? जिसने भी कहा हो वो आपसे माफी मांग लेगा। आप ऐसे खाना तो नहीं छोड़ सकती हैं। और ये घर आपका ही है, हमेशा से आपका रहा है और आगे भी आपका ही रहने वाला है। जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? मेरा क्या होगा? बाकी सब लोगों के पास तो कोई ना कोई है, पर मुझे प्यार करने वाली तो आप ही हैं ना। बचपन से मैं आपके आसपास रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा। और मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आपको ये कभी भी मंजूर नहीं होगा कि मुझे कुछ भी बुरा लगे। उसकी इस बात पर माधवी ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए प्यार से उसके सिर को सहलाकर कहा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। मैं अब तक चुप थी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम इन परिवार के लफड़ों में फंसकर अकेले पड़ जाओ। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम्हें भी मुझसे कुछ खास मतलब नहीं रह गया है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। नए लोगों पर अक्सर ऐसे ही पुराने लोगों को भुला दिया जाता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, तो मैं तुम्हें इसके लिए शिकायत भी नहीं कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर रूहान का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं मानता हूँ कि मैं मैडम जी अनाही को ज़्यादा वक्त देता हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं, अपना घर, अपना परिवार। अब अगर मैं उन्हें ज़्यादा वक्त देता हूँ तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। आप इसके लिए शिकायत नहीं कर सकती, ये बात सच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपकी मेरे जीवन में कोई अहमियत नहीं रह गई है। रूहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माधवी अनाही से असुरक्षित कैसे महसूस कर सकती है। माधवी को तो खुश होना चाहिए था कि उसका बेटा अपनी घर गृहस्थी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा था। अब उसे भी अनाही की बातों पर संदेह होने लगा था कि कहीं माधवी बस उसे नियंत्रित करना चाहती है, असल में उससे प्यार नहीं करती है। माधवी के पास रूहान की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वहीं अनाही, जो वेदांत की मदद कर रही थी, उसने हॉल में अचानक इतनी शांति देखकर आंखें छोटी करते हुए कहा, ये सब लोग एक साथ कहाँ चले गए? वेदांत ने खाने की खुशबू लेते हुए कहा, अरे यार, रात का वक्त है, अब क्या तुम उनसे भांगड़ा डांस करवाना चाहती हो? अपने रूम में सोने गए होंगे, और तो क्या ही कर रहे होंगे। अनाही ने विहान की हरकतों को याद करते हुए कहा, पर विहान जी तो बोल रहे थे कि वो मुझे अकेला छोड़कर कमरे में नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो भी गए होंगे। और मम्मी जी, वो भी नहीं आई यहाँ, उन्हें पता था कि आप विवाह के लिए खाना बना रहे हो, तो वो भी ज़रूर आती हैं एक बार ये देखने कि आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो और कैसा बना रहे हो, लेकिन वो भी नहीं आई हैं। मुझे तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है। आप खाना बनाइए, ये सब कुछ मैं देख कर आता हूँ आखिर हुआ क्या है। इतना बोलकर अनाही तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकली और फिर हॉल में काम कर रहे एक सर्वेंट से पूछा, भैया ये सब लोग एक साथ कहाँ गए हैं? सर्वेंट ने उन लोगों की बातें सुनी थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, वो बड़ी मालकिन नाराज़ हैं किसी से, इसलिए सब लोग उन्हें मनाने के लिए उनके कमरे में गए हैं। वेदांत, जो अनाही के पीछे खाना लेकर आ रहा था, उसने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें फैल गईं। उसने मन में कहा, ओ गॉड, दादी जी फिर से हंगामा करेंगी। मैं नहीं चाहता अनाही इस चीज़ की वजह से कोई तनाव ले। मैं तो नहीं जाऊँगा उन्हें मनाने के लिए, बच्चे थोड़ी हैं कोई जो ऐसी बातों पर नाराज़ हो जाएँ और फिर हम उन्हें मनाने जाएँ। इतना बोलकर वेदांत ने मुंह बनाया और फिर तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जाने लगा। अनाही को माधवी की तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसे रूहान के बारे में सोचकर थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रूहान माधवी से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर माधवी नाराज है तो जरूर रूहान का मूड भी खराब हो गया होगा, इसीलिए वो सर्वेंट को थैंक यू बोलते हुए तेज कदमों से माधवी के कमरे में जाने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा रूहान और माधवी आमने सामने बैठे थे, बाकी सारा परिवार उनके आसपास खड़ा था। वहीं माधवी ने जब रूहान के बात का कोई जवाब नहीं दिया तो इस बार रूहान ने हल्के गुस्से में कहा, वो मेरी पत्नी है तो मैं उनको ज्यादा वक्त दूंगा। अगर आप इसके लिए मुझसे नाराज रहना चाहती हैं तो आप पूरी जिंदगी मुझसे नाराज रहें, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कहीं से भी गलत हूँ। रोहन की ये बात सुनकर अनाही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ गई, जो जल्द ही वापस भी चली गई, क्योंकि उसे पता था रोहन यहाँ ये जरूर बोल रहा है, लेकिन उसे भी माधवी को चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी तेज कदमों से अंदर गई और फिर निवेदिता के बगल में खड़ी होते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है सासू माँ? निवेदिता ने भी फुसफुसाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता बेटा, उनके साथ किसने बदतमीजी की है, क्योंकि यहाँ खड़े लोगों में से तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। मेरी तो बात ही नहीं हुई थी, ना ही विहान ने आज कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ जाए, और ये बोल भी नहीं रही हैं। अब पता नहीं हमें कितनी देर और खड़ा रहना पड़ेगा उनकी बातें सुनने के लिए। मुझे तो वेदांत के पास जाना था, पर अब नहीं जा पा रही हूँ। वहीं राधिका ने धीरे से रितेश के कान में कहा, आपको नहीं लगता आपकी भाभी कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रही हैं? अब तक तो इन्हें बता देना चाहिए था कि विहाने बदतमीजी की थी, ताकि सब लोग उसे यहाँ बुलाकर लेकर आते, पर ये नाम नहीं बताएंगी तो विहा खुद से चलकर तो यहाँ आकर माफी मांगने वाली मुझे लगते नहीं है। वो कितनी ज्यादा जिद्दी लड़की है, रितेश ने गहरी सांस छोड़कर कहा। हम सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, चुपचाप खड़ी रहो तुम यहाँ और देखते जाओ। वो तुमसे ज्यादा अनुभवी है, उन्हें पता है क्या कब और कैसे बोलना है, तुम उनका ये खेल खराब मत करो। वहीं माधवी ने जैसे ही रोहन की गुस्से वाली आवाज सुनी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन उस पर गुस्सा भी कर सकता है। अचानक ही उसे याद आया कि रोहन की अग्रेशन वाली दवाइयां शुरू हो चुकी हैं। उसने अपने मन ही मन कहा, इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मैं तो भूल ही गई थी कि रोहन ने दवाइयां ले रखी हैं। अब मैं रोहन पर ऐसे रोक नहीं जमा सकती हूँ, उसे कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोल सकती जिससे उसे गुस्सा आ जाए। माधवी ने जल्दी से अपनी गलती सुधारते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अनाही के साथ खुल मिल रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। आज मेरे साथ विहाने बदतमीजी की थी, वो लड़की दिन पर दिन मेरे सर पर ही चढ़ती जा रही है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, जबकि ऐसा तो कुछ है भी नहीं। मैं तो उसे बच्ची समझकर बस छोटी छोटी बातें सिखाती रहती हूँ कि उसे ये करना चाहिए और ये नहीं, लेकिन वो उन बातों पर मुझसे पागलों की तरह बहस करने लगती है।
रूहान ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ, वो आपसे सॉरी बोल देगी और उसके बाद आप खाना खा लेना। ऐसी छोटी छोटी बातों पर खाना नहीं छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ विहा नाराज होकर खाना छोड़ती तो एक बार को समझ भी आता कि वो बच्ची है और शायद उसके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, लेकिन आप इस उम्र में ऐसे करेंगी ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। इतना बोलकर रूहान माधवी के बेड से उठ गया और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर जाने लगा विहा को बुलाने के लिए।